कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत का शांति पर्व है। जितने अध्यात्म ग्रंथ हैं उनमें शांति पर्व सबसे बड़ा है। खूब प्रश्नोत्तर हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने पितामह भीष्म के पास बैठकर ये सब चर्चाएं की है। इसमें दो बात की शिक्षा मिलती है। एक तो मरने वाले व्यक्ति के पास भगवान की चर्चा करनी चाहिए, जो युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। दूसरा, मरने वाले व्यक्ति को भगवान का चिंतन करना चाहिए, जो पितामह भीष्म करते हैं। तीसरी बात इससे शिक्षा मिलती है कि अपने कुटुंबी लोगों से अध्यात्म की चर्चा ज्यादा करनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने ये नहीं पूछा कि हस्तिनापुर का खजाना कहाँ है। पितामह, आप तो कितनी पीढ़ी देख चुके हो, 3-4 पीढ़ी देख चुके हो। हमारे पिताओं को देखा है, हमारे पिता के पिताओं को देखा है, और उसके बाद आप और आपके पिताजी, इतने पीढ़ियां हैं, तो आपके पास कोई धन संपत्ति, कोई खजाना हो तो बता दो। नहीं पूछा, लौकिक बात नहीं पूछी, कर्तव्य की बात जरूर पूछी कि राजा का कैसे कर्तव्य पालन होता है। और भी बहुत सी बातें पूछ रहे हैं, आपने सुनाई है। युधिष्ठिर महाराज आज पूछते हैं कि महाराज ये देखिए, ये इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का मैदान, इसमें बड़े बड़े बलिष्ठ जो है महायोद्धा, 10-10 हजार हाथियों जितना बल, जिनके चलने से पृथ्वी भी डावाडोल हो जाती थी, वे लोग मर गए। कस्य मृत्यु, ये मृत्यु किसकी है? कुतो मृत्यु, ये कहां से आई है? केन मृत्यु, किससे मृत्यु हुई है? और ये प्राणियों का प्राण कैसे हर लेते हैं? इतने बलवान है वो राजा लोग, कैसे उनके प्राण, किसने, मृत्यु ने कैसे हर लिए? देखते ही, जिनको हम देखते थे यूं चलते थे तो डर लगता था, और आज देखो ऐसे पड़े ही। मृत्यु क्या चीज है? पितामह भीष्म ने कहा कि वत्स युधिष्ठिर, एक राजा थे जिनका नाम था अकंपन। एक बार उन पर आक्रमण कर दिया, कम करके आओ, एक बार शत्रु ने उन पर आक्रमण कर दिया तो उस आक्रमण के अंदर उनका बेटा था, उसका नाम था हरि। बड़ा सुंदर लड़का, श्रेष्ठ लड़का, गुणों में श्रेष्ठ। शत्रुओं ने उसको मार दिया। अब उसका पिता इतना दुखी हो गया, अपना राज्य सब शत्रुओं को दे दिया, ले जाओ, बेटा ही नहीं, क्या करें। पुत्र शोक के अंदर बड़ा पीड़ित हुआ। इधर से घूमते हुए बड़े सबको, सारे संसार को शांति देने वाले नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी मिले तो नारद जी को देखकर वो राजा खूब रोया। रोते रोते कहने लगा, महाराज मेरा राज्य चला गया, शत्रु ने मेरा राज्य छीन लिया, इस बात का तो इतना दुख नहीं है जितना मेरा बेटा मर गया इस बात का दुख है। मेरा बेटा मुझे कैसे मिले? नारद जी ने कहा कि देखो, मैं तुमको एक बहुत पुराना इतिहास सुनाता हूं। क्या इतिहास है महाराज? कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, खूब सृष्टि बनाते गए। तो जैसे कुम्हार के यहां खूब घड़े बन गए, अब वो कोई खरीदने वाला नहीं हो तो और वो बनाया जाए तो कितना बनाएगा, उसकी मिट्टी, उसका काम, उसका घर सब उससे भर जाए, अब क्या करे? अब उसका यदि कोई माल खरीदता नहीं है, घड़े वगैरह खरीदता नहीं है, तो बनाने से क्या फायदा? ऐसे ब्रह्मा जी की दशा हो गई। लोग आपस में, सारे प्राणी आपस में यूं कस कस करके जीने लगे, धक्का खा खा करके जीने लगे। निरुच्छ्वासम इवो नद्धम, लोगों का सांस आना मुश्किल, अट गए। जैसे डिब्बे के अंदर 100 आदमी बैठ सकते हैं, वहां 150 आदमी चले गए, 125 आदमी चले जाए, कैसे रहते हैं वो? ऐसे जब ये सृष्टि होने लगी तो ब्रह्मा जी घबराए कि अब क्या करें, तो सब सृष्टि को खत्म करो। तब उनकी आंखों से क्रोध पैदा हुआ और मुंह से आग निकली, सबको खत्म करने लग गए। अब आकाश में, पृथ्वी में, स्वर्ग में, सब जगह क्रोधाग्नि से प्राणियों का मरना चालू हो गया। या तो वो पहले बनाते थे, या वो मारना चालू कर दिया। इतने में ही भगवान शंकर थे, वो आए कि महाराज एक निवेदन करूं। कैसे आए शंकर जी? करवाण्यद्य किं कामम, आपका कौन सा काम है जो मुझे करना है, बताओ, कोई वरदान मांगो, हमारे पास कैसे आए? शंकर जी ने कहा, महाराज दुनिया आपको क्या कहेगी, पहले तो आप बनाते ही गए और इधर बनाए और उधर आपने उनको सबको जलाना चालू किया, और कहेंगे ब्रह्मा जी है कि बच्चा है? छोटे बच्चे बरसात के अंदर जैसे खूब घर बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, और फिर उसको एकदम मिटिया मेट कर देते हैं, उसी प्रकार से ये तुम क्या बचपना करते हो महाराज, लोग आपको क्या कहेंगे? माँ कुप्यासाम पितामह, आप तो पितामह हो, सबको पैदा करने वाले हो, आप मारो मत इनको। आपका तेज प्रचंड है, क्रोधाग्नि में सब भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर जी मैं कुपित थोड़ी हो रहा हूं, ये कुपित नहीं तो क्या है हमारा? ना ना ना, क्रोध का संबंध तो अंदर में होता है ना, अंदर कोई छाती जलती हो, अंदर कोई, मेरे अंदर कोई बैर लेने की भावना हो, वो बात तो है नहीं। मेरे अंदर न कामना है, न मेरे अंदर कोई क्रोध है, केवल लाघवार्थम, थोड़ा वजन हल्का हो जाए सृष्टि का, ताकि लोग आराम से रह सकें। पृथ्वी भारों मर रही है कि नहीं महाराज, तब भी आपका ये ठीक नहीं है, ये हरे हरे वृक्ष बिचारे कैसे खिल रहे हैं, ये जलेंगे, इनको तकलीफ हो जाएगी। स्थावर जंगम सारे प्राणी महाराज जीना चाहते हैं, अब जीने वालों को आप क्रोध से मारोगे, ये ठीक नहीं है महाराज, ये नष्ट हो जाएंगे, फिर पैदा नहीं होंगे। तो आप इनके कोई दूसरा उपाय सोचिए। अभाव में न गच्छेयु, एक तरफ आपने बनाया, दूसरी तरफ आपने जलाना चालू किया, तो सृष्टि में तो अभाव हो जाएगा ना सृष्टि का। मैंने आपने मुझे सृष्टि के रक्षा के लिए नियुक्त किया है, इसलिए मैंने आपको ये बात कही है। तब जो है ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी आपकी बात तो बड़ी अच्छी है, उपाय कोई और करना चाहिए। तब उन्होंने उस क्रोध को समेट लिया, क्रोध तो नहीं था, आग थी, उस आग को यूं समेटा। जो आग को यूं समेटे तो आग की जो ज्योति थी, मुख की जो गर्मी थी और आग की ज्योति, ये सब एक साथ ज्योतिर्पुंज एक सामने आया। एक स्त्री खड़ी हुई सामने, वो काले और लाल वस्त्र पहनी हुई, काले काले नेत्र, कानों में दिव्य कुंडल आभूषण पहनी हुई, एकदम पितामह के सामने खड़ी हो गई। और शिवजी भी वहीं थे, दोनों ने देखा उसको। प्रजापति ने कहा कि बेटा इधर आओ, आज से तुम्हारा नाम मृत्यु रखेंगे, तुम समय के अनुसार सबका विनाश करो। हे मृत्यु, मेरे आदेश का तुम पालन करो और प्रजा का संहार करो। वो नीचा मुख करके रोने लग गई। ब्रह्मा जी ने कहा बेटी, जब कोई बेटी बाप के सामने रोती है तो बाप का हृदय बहुत जल्दी पिघलता है। बताओ बेटी क्या बात है, हमने तो तुमको सृष्टि की सेवा में लगाया, तुम रोने लग गई। तो मृत्यु कहने लगी कि महाराज, पिताजी मैं बहुत कोमल हृदय वाली हूं, मैं ये मारना जैसा क्रूर कर्म नहीं कर सकती, बड़ा भारी पाप लगेगा। मैं आपसे पैदा हुई हूं, आपके नेत्र ज्योति से और मुख की अग्नि से पैदा हुई हूं, मैं ये काम कैसे करूं, मेरे चक्कर में आने वाला बालक भी मरेगा, जवान भी मरेगा, बूढ़ा भी मरेगा, ये बेचारे निरपराध प्राणी मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मैं इनको मार नहीं सकती। पिताजी मैं आपको प्रणाम करती हूं, मुझे आप क्षमा कीजिए। किसी का भाई मरेगा तो एक भाई रोएगा, किसी का बेटा मरेगा तो पिता रोएगा, किसी का पति मरेगा तो बेचारी पत्नियां रोएंगी, किसी का पिता मरेगा तो बेटे रोएंगे। मरने के बाद तो रोने के अलावा कुछ नहीं होता ना पिताजी। और वो ऐसे भयंकर रोते हैं, रोते रोते मुंह काला होता है, सारा शरीर उनका आंसुओं से भर जाता है, पछाड़ा खा खा करके रोते हैं, वो दृश्य देखा नहीं जाता। इतना कठोर काम मैं तो नहीं कर सकती हूं, अतः महाराज मुझ पर कृपा कीजिए और मैं तो अब आपकी प्रसन्नता के लिए तपस्या करने के लिए जा रही हूं। प्रणाम करके तपस्या के लिए तैयार हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे पिता की आज्ञा से बढ़कर भी कोई तपस्या होती है क्या बेटी? बेटा बेटियों के लिए तो पिता की आज्ञा सबसे बड़ी तपस्या होती है, कि मेरी आज्ञा को टाल करके और तुम तपस्या करोगी, क्या सिद्धि ले लोगी उसमें? मेरी आज्ञा है तुम प्रजा का संहार करो। देखो मैं जो संहार कर रहा हूं तो कोई दुश्मनी से थोड़ी मारने के लिए कहता हूं, ये प्रजा है, ये मरेगी, मरेगी तो फिर जन्मेगी, फिर मरेगी फिर जन्मेगी। नहीं तो इतनी प्रजा यदि यहां पृथ्वी पर आकाश में सब लोकों में छा जाएंगी और तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगी तो उस समय सृष्टि के प्राणी बड़े दुख पाएंगे, इसलिए तुम मेरी बात मानो। वो मृत्यु ने यूं हाथ जोड़ दिया, न हां बोली न ना बोली, और पिता के सामने मुस्कुराई तो पिताजी भी मुस्कुरा दिए, बुरा नहीं माना पिताजी ने, और मुस्कुरा करके वो तो वहां से रवाना हो गई। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, देखो शंकर जी, मेरी बात नहीं मानी और ये मृत्यु यहां से चली गई, क्या करना चाहिए? भगवान शंकर ने कहा कि आप कोई और विचार कीजिए। अब इधर मृत्यु चली गई बहुत दूर जा करके और तपस्या करने लगी, 15 पद्म वर्षों तक तपस्या की, एक पैर पर खड़े होकर 15 पद्म, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म और 15 पद्म, इतने वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, अरे बेटा तू तपस्या करती है, एक पैर पर खड़ी है और मेरा मेरी बात तो मान, तू तो चल और सृष्टि का संहार कर। आंख बंद करके खड़ी हो गई और फिर ये पैर तो नीचे रख दिया और इस पैर को इस पैर से हटा करके खड़ी हो गई, तो 20 पद्म तक फिर खड़ी रही। ब्रह्मा जी ने देखा अब तो ये बोलेगी नहीं, जब जब ब्रह्मा आए तब तब ब्रह्मा जी को देखे और हाथ जोड़ देवे और फिर तपस्या में लग जावे। ऐसे करते करते उसको जो है देखा कि भाई मैं यहां रहूंगी, ब्रह्मा जी आए, तो वो पानी के अंदर चली गई, पानी में गई और पानी के अंदर जाकर के और वो वहां भी हजारों पद्मों वर्षों तक पड़ी रही और वहां तपस्या करती रही। तो वहां पानी के अंदर दानव लोग आए, और दानवों ने कहा कि मृत्यु तुम ब्रह्मा जी की बेटी हो, ब्रह्मा जी की बात नहीं मानती हो, तुमने पृथ्वी पर रहकर इतनी तपस्या की, हिमालय पर रहकर तपस्या की, अब तुम जल में आकर के तपस्या कर रही हो, ब्रह्मा जी की अपने पिताजी की बात तो मानना चाहिए ना आपको। कहा कि पिताजी की बहुत कठोर बात है, मैं क्या करूं, मैं नहीं मान सकती। इतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा देख बेटी, अब तो मैं मेरी बात मानने के लिए तुमको विशेष रूप से जो है दबा करके भी कहूंगा, तुमको मेरी बात माननी चाहिए। कहा कि मैं प्रजा का नाश नहीं कर सकती। अरे भाई इसमें कोई अधर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है कि लोग रोते हैं मरने, लोग रोते हैं वो उनका अज्ञान है, उनका पाप है, उनकी मूर्खता है। मैं लोगों को रुलाने की नीयत से थोड़े ही मारता हूं, मैं सृष्टि के लिए मौत आवश्यक है इसलिए मैं मारने की बात बोलता हूं। सनातन धर्म है ये, प्राणी सुखी रहे। तुम ही बताओ जो चीज काम लायक नहीं रहती उस वस्तु को फिर क्या किया जाए। ये शरीर काम के लायक नहीं रहता है, बुढ़ा हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, तो ये स्वयं ही लोग सोचते हैं कि शरीर चला जाए तो बड़ा अच्छा है। इसलिए तुमको तो सब लोग समय पर स्वीकार करने के लिए तैयार है। कि पिताजी कुछ भी कहो, मैं आखिर एक स्त्री हूं, स्त्री का हृदय बड़ा कोमल होता है, आप किसी पुरुष को ये काम क्यों नहीं भेज देते? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मृत्यु, मैं सोच समझ करके ये बात कह रहा हूं, मेरी बात का तुम गहराई से विचार करो। देखो अभी तुम जो मेरे से बात करती हो, तुम्हारा एक बाप के प्रति स्नेह उमड़ रहा है, तुम्हारे इन आंखों से निकलने वाले आंसुओं को मैंने अपने अंजलि में लिया है और ये ही आंसू सारे संसार के अंदर फैलकर अनेक प्रकार की बीमारियां बनेंगी, बुखार है और है, सब इन्हीं आंसुओं से बन गए। ऐसे मौके पर यदि प्राणी जीवित रहेगा तो तुम बताओ, तुम ऐसे मेरे प्रेम में रोती रहोगी, उनके आंसुओं से रोग फैलता रहेगा, तो उससे प्रजा कितना कष्ट पाएगी बता? कि ओहो, मेरे आंसुओं से ही प्रजा के अंदर बीमारी फैलेगी? कि हाँ। और वो बीमारी से कर रहेगा, अरे जब तू उसके पास चली जाएगी वो आदमी मर जाएगा, अज्ञानी आदमी थोड़े दिन रो करके वापस वैसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो मरने वाला आदमी है वो मरे नहीं और वो खांसता रहे, बीमार पड़ा रहे, शरीर में कष्ट हो, तो वो कष्ट बड़ा है या परिवार वाले मरते हैं वो कष्ट बड़ा है? तो पिताजी ये बात आपने मुझे पहले नहीं कही, अब आप कहेंगे वो मैं स्वीकार करती हूं। तब वो मृत्यु यहां पर सबका समय के अनुसार नाश करती है। जिस प्रकार से सर्वे देवा प्राणिनाम प्राणान्ते, माने जब आदमी गहरी नींद में सोता है तो इंद्रियां मन बुद्धि सब उस अज्ञान में लीन हो जाते हैं, कुछ पता नहीं रहता कि मैं सो रहा हूं कि जाग रहा हूं, या कुछ पता नहीं। गत्वा वृत्ता संवृत्तास्तथैव, और फिर जागृत अवस्था होने पर वापिस वैसे ही, हाँ साहब हम कल था आज ये हो गया, ऐसे ही ये मृत्यु आती है, एक शरीर को लेकर के बदला करके बाद में दूसरे शरीर में आ जाती है। इसलिए हे राजन, तुम्हारा बेटा मर गया, इस बात के लिए तुम दुखी हो रहे हो, और वो बेटा कहीं कहीं जन्म गया उस बात को लेकर कई लोग सुखी हो रहे हैं, आहो हमारे घर में बेटा आया है। तुम अपनी दृष्टि को छोटी मत बनाओ, छोटी दृष्टि के कारण से ऐसा होता है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ओहो, इसका मतलब तो ये हुआ कि सृष्टि में मृत्यु पूर्व निर्धारित और परम आवश्यक चीज है। पितामह भीष्म ने कहा ये बहुत आवश्यक है, इसीलिए हम लोग सरसैया पर पड़े हुए अब अपनी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, तभी तो तुम्हारे लिए महल खाली होंगे ना युधिष्ठिर, फिर तुम चले जाओगे, तुम्हारी संतानें उसमें आएंगी, फिर वो चली जाएंगी, उनके संतानें आएंगी, क्रम है, और अपना कर्म शेष बाकी रहेगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महाराज तब तो मृत्यु से पहले पहले हमको धर्म कमा लेना चाहिए। महाराज धर्म को हम कहां से सीखें? कि हमारे शास्त्रों से सीखो, स्मृतियों से सीखो, सदाचार से सीखो, महापुरुषों के जो आचरण है उनसे धर्म, जैसे स्रोत से जल बरसता है ऐसे उनसे धर्म टपका करता है। सबसे बड़ा धर्म है सत्य से वचनम साधु, न सत्याद विद्यते परम, सत्य से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है। जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा कहा, उसका नाम जो है सत्य है। और ये सत्य सबके अंदर मौजूद है, सभी आदमी सद्व्यवहार चाहते हैं। चोर आदमी दूसरे के घर में चोरी करता है, पर उसके घर में चोरी होती है तो वो चोर कर्म को बुरा मानता है, अरे चोरी हो गई, स्वयं चोरी करने गया और पीछे से उसके घर में चोरी हो जाए तो। अखबार में पढ़ा कि एक इनकम टैक्स का अफसर था, उस वो अफसर गया कहीं छापा डालने के लिए, छापा मारने के लिए, तुम्हारी कितनी कमाई है वो रहे। उसको पता नहीं उसके घर पर छापा पड़ गया, उसको पता ही नहीं इधर उसके घर में छापा पड़ा, उसके यहां बहुत अवैध धन मिला, तो उस चोर को तब पता चलता है कि चोरी करना कितना बुरा होता है। इसका अर्थ ये युधिष्ठिर, कोई आदमी जानता नहीं हो ऐसी बात नहीं है कि धर्म क्या चीज है, अच्छा काम क्या है, सब जानते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर लोग अपने धर्म को भूल जाया करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज लोगों से अलग अलग बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि ये धन है ना, धन यही धर्म है, धन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, धन नहीं होगा तो ये कोई धर्म वगैरह नहीं होगा। तो ये धर्म किसी पर अवलंबित है क्या, क्या धनादि के सहारे से रहने वाला है? कि बिल्कुल नहीं, धर्म स्वतंत्र है। बल्कि धर्म के पीछे अर्थ आता है, अर्थ के पीछे जो धर्म होगा वो धर्म तुम्हारा पतन करने वाला होगा। अर्थ जैसे मिल जाए वो काम करे वही धर्म है, ये गलत बात है। बल्कि धर्म की चेष्टा रखो, अर्थ गौण है धर्म प्रधान है। कहने लगे, पितामह भीष्म के एक जाजली नाम के ऋषि थे, बहुत तपस्या की उन्होंने, ऐसी तपस्या की कभी सागर के पास जाकर, कभी कहां कभी कहां, कई जगह उन्होंने तपस्या करते करते उनके मन में ये घमंड आ गया, न मया सदृशोस्ति है लोके स्थावर जंगमे, स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में मेरे जैसा कोई जो है तपस्वी नहीं है, न आकाश में है न जल में है। वो जल के अंदर डूब के तपस्या कर रहे थे तो वहां पर जल के अंदर रहने वाले पिशाच आए, घेर लिया कि ऋषिवर घमंड मत करना, हो ये घमंड करने से हम लोगों की पिशाच अवस्था हो गई, इसलिए घमंड मत करना। आप कहते हो कि मेरे जैसे किसी ने ही तपस्या नहीं की, आपकी तपस्या कुछ नहीं है। बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर तुलाधार नाम का एक वैश्य है, उसकी तपस्या के सामने आपकी तपस्या धूल के दाणे जितनी नहीं है, कुछ नहीं है। जाजली ने कहा कि तुलाधार वैश्य के, हां वैश्य तो हरदम दुकान पर बैठा हुआ सामान तोलता रहता है, रुपये का लेन देन करता है, वो तपस्या करता है, ये क्या करता है हमको पता नहीं है। पर जाजली जी वो बहुत बड़ा तपस्वी है, कैसे तपस्वी हमको पता नहीं, आप उसके पास जाओ। और हमारा तो ये निवेदन है, उसके पास बैठकर आप समझो सीखो कि तपस्या क्या होती है। आप अपने मन में ही अपने आप को बड़ा मान लिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि पितामह, ये तुलाधार वेश्य ने कोई बड़ी तपस्या की थी क्या? पितामह कहने लगे कि नहीं बेटा, तुलाधार वेश्य ने तपस्या नहीं की, तो जाजली ने तपस्या की। जाजली ने ऐसी कौन सी तपस्या की? अरे जाजली की क्या बात बताएं बेटा, ऐसी जंगल में जाकर तपस्या की, उसने धर्म वर्म कुछ नहीं सोचा, केवल कठिनता से जीवन निर्वाह किया, उसी को उसने तपस्या मान ली। खूब जो है कष्ट सहन किया, बरसात में खड़ा रहे, बड़ी भयंकर ठंड हो तो ठंडी ठंडी नदियों के अंदर गले तक खड़ा रहे, गर्मियों के अंदर खूब ग्रीष्म में रहे। नच धर्मम अविंदत, तपस्या तो की पर धर्म नहीं मिला उसको। धर्म माने क्या करना चाहिए क्या कर नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन वो अपने आप को समझ रहा था कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। अब वो एक बार यूं एक पैर से खड़ा है, उसकी जटा है ऐसी जटा, जटा के अंदर एक कुरर पक्षी आ गया, चिड़िया है चिड़िया, कोई कमेड़ी बोलते हैं, कोई चिड़िया बोलते हैं, कोई हो भले, एक जोड़ा आकर वहां रहने लग गया। जटा थी यूं उनके अंदर घोंसला बना लिया। उन्होंने देखा कोई ठूंठ है, ठूंठ पेड़ होगा, क्यों निश्चल खड़े थे, शरीर को डुलावे ही नहीं। उन्होंने देखा कोई पेड़ है, उसके अंदर ये घोंसला बना लिया, घोंसला बना लिया। उसको पता है कि यहां पर ये जो है पक्षी रह रहे हैं। अब बेचारे पक्षी रह रहे क्यों उड़ाए अपनों, क्या मतलब। यदा न स चलत्येष है स्थाणुभूतो महातपः, वो इधर उधर कुछ हिलते डुलते नहीं थे, तो इससे दोनों पक्षी बड़े आराम से रहते थे। थोड़े दिनों बाद उनके अंडे हो गए। अंडे होने लगे तो अब अंडों के में से छोटे छोटे पक्षी निकले तो वो दोनों के दोनों चुग्गा ला ला कर देवे। अब उन्होंने देखा कि मेरे को हिलना नहीं है, हिल जाएंगे तो बेचारे बच्चे नीचे गिर जाएंगे और जो है ये बेचारे कष्ट पाएंगे, तो अपने सीधे खड़े रहो। ऐसे करते करते जो है वो बच्चे फिर पंख आ गए और पंख आने के बाद उड़ गए, वो भी उड़ गए, बच्चों के पिता माता भी उड़ गए और बच्चे भी उड़ गए, सब उड़ उड़ा कर गए। तब कहा बड़ा अच्छा, देखो कैसी मैंने तपस्या की, कितना मैंने सिद्ध होश्मी, मैं सिद्ध हो गया। ऐसी उसके अंदर वृत्ति पैदा हुई और वो सब बातें याद कर करके, देखो मेरे ऊपर इतने पक्षी बैठे रहे फिर भी मैं हिला डुला नहीं, ऐसे याद करके और अपने आप को अकेले में इधर मेरे बराबर कौन है, यथा अंतरिक्ष वागासी, कौन ऐसा मेरे बराबर है जो इतना बड़ा धर्म करने वाला है, ऐसी चेतावनी सी दी। तो उसी समय में आकाशवाणी हुई, ए मूर्ख जाजली, तुम्हारे जैसा अहंकारी पुरुष हमने नहीं देखा, तुम तुलाधार जैसे धर्मात्मा नहीं हो, उन जैसे तपस्वी नहीं हो, उन जैसे श्रेष्ठता तुम्हारे अंदर इस अवस्था में नहीं आ सकती। ऐसे करके तुलाधार की प्रशंसा हुई और वो बनारस में रहता है, तुमको जाकर परीक्षा करनी तो परीक्षा करो, ऐसे वो जोर जोर से बोलने लगी, आकाशवाणी में आवाज आई। वो सोचता है कि मुझे पिशाचों ने भी कहा और ये भी बोलते हैं, बात क्या है, तब तो तुलाधार के पास जाना चाहिए। वहां से पैदल पैदल रवाना हुए, अमर्ष वशमापन्न है, क्रोध के वशीभूत हो गए वो, ऐसा कौन तुलाधार मेरे सामने आएगा, कभी आकाशवाणी बोलती है कभी पिशाच बोलते हैं, कभी आकाशवाणी कभी जलवाणी देखता हूं। ऐसे चलते चलते बनारस पहुंच गया, लोगों से पूछा कि यहां तुलाधार की दुकान कहां है। अरे आप तुलाधार जैसे महान पुरुष से मिलना चाहते हैं, आपका तो भाग्य खुल गया। उसको आवे और क्रोध कि मेरे जैसा कोई तपस्वी इतना बड़ा है, मैं तुलाधार से तो आकाशवाणी तब मिलने जा रहा। कहा नहीं, मैं तुलाधार से मिलना चाहता हूं कि देखिए तुलाधार से मिलने के लिए आपको अनंत अनंत जन्मों का कोई पुण्य प्राप्त हुआ होगा, तब उस महापुरुष के आपको दर्शन होंगे, आप इस रास्ते से जाओ फिर पूछ लेना। वो गए साहब तुलाधार के, तुलाधार के दर्शन करेंगे आप, हे ऋषिवर आपकी सारी तपस्या फलीभूत हो जाएगी, तुलाधार के दर्शन करते ही आपका तो कल्याण हो जाएगा। जाजली के मन में फिर कष्ट हुआ, ये क्या भाई तुलाधार, ये कौन सा तुलाधार है, चला गया जाकर के वहां खड़े हो गए। तुलाधार तुम आओ, हम इतनी देर से खड़े हैं बात नहीं करते, आओ। महाराज बहुत देर में पधारे आप, आपको तो पहले से ही मेरे लिए बोल दिया था कि आपको आना है, आप आए नहीं। जब आप जल के अंदर थे तपस्या करते थे तब आपको पिशाचों ने कहा था तुलाधार से मिलो, आपने देरी क्यों की मेरे से मिलने के लिए। आश्चर्य में पड़ गया, अरे उस जल के अंदर तो केवल मैं अकेला ही था, किसी को पता ही नहीं, इनको कैसे पता चला, और अब आप आए हो तो अच्छा। आपके वो पक्षी उड़ गए कि नहीं, पक्षी उड़ गए ना, अच्छा अच्छा बड़ा अच्छा हुआ, नहीं तो पक्षी बिचारे यहां कष्ट पाते नगर में। अच्छा उनके बच्चे भी उड़ गए ना, हाँ वो भी उड़ गए। और वो गौर करके देखता है, वाह तुलाधार वाह, तू तो सब बात जानता है रे। जाजली ने कहा कि तुलाधार तो तुला के ऊपर तराजू के ऊपर सामान तोलता है, सामान तोलते तोलते तूने तो मेरी तपस्या को भी तोल दिया। अरे तू तो सब जानता ही, क्या बात है भाई। अध्यगा नैष्टिकीम बुद्धिम, तुम्हारे अंदर ये बुद्धि कैसे आई। तुलाधार ने कहा, सुनो ब्राह्मण देवता, धर्म का तत्व बड़ा सूक्ष्म होता है। एक क्रिया प्रधान कर्म होता है और एक भाव प्रधान स्वभाव होता है। जो आदमी किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता, वो आदमी जितना बड़ा धर्म जानता है, धर्म कर सकता है, तपस्या तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तुमको मालूम है, ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये मार्ग में पड़े हुए स्वाभाविक ही पड़े हुए कास्ट से लाकर मैंने इसको बनाया है। निर्वाह तक मैं अपना निर्वाह हो बस उतना ही कमाता हूं, मेरे पास अर्थ संग्रह नहीं मिलेगा। मेरी दुकान के ऊपर कोई भी व्यक्ति आ जाए उससे मैं कोई मुनाफा नहीं लेता हूं, ठग करके जितना लेता हूं उतना ही बता देता हूं कि इतना मुनाफा है भाई हमारा। उससे मैं मेरा बड़ी मुश्किल से काम चलाता हूं, तो मेरा व्यापार बहुत शुद्ध है, मेरी वृत्ति बड़ी शुद्ध है, न मेरा किसी से दीनतापूर्ण वचन निकलता है कि मुझे कुछ दे हो, ऐसा नहीं निकलता, न मैं कामना करता हूं, न मैं द्वेष करता हूं। मेरा नियम है, मैं आकाश के समान असंग रहता हूं। हे जाजली जी, यथांध बधिरोन्मत्ता, जैसे अंधा आदमी आंखें तो है दिखता नहीं है, ऐसे ही मैं अपने आंखों से बाहर नहीं देखता अंदर देखता हूं, कानों से बाहर नहीं सुनता बाहर की चीजें नहीं सुनता अंदर की बात सुनता हूं। और जैसे मदोन्मत्त आदमी मदिरा पीकर मस्त होता है, मैं वो मस्ती में नहीं रहता हूं, मैं अपनी खुद मस्ती में मस्त रहता हूं, क्योंकि मैं किसी के साथ द्वेष नहीं रखता, मैं किसी से भयभीत नहीं होता, तो मेरे से भी कोई भयभीत नहीं होता। समस्त प्राणियों को अभय देना चाहिए, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ मोह और स्वार्थवश व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखो जाजली जी, इस संसार के अंदर एक नदी, संसार रूपी नदी है, उसमें आप हम सभी काष्ठ के समान, लकड़ी के समान है। लकड़ियां बहती है गंगा जी में, वो इसके टकरा गई, वो इसे टकरा गई, यूं चली गई, वो इधर छोड़ दी, वो यूं चली, ऐसे आपस में मिलते हैं चले जाते हैं, मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं। तृण काष्ठ करेशानी कदाचित न समीक्षा, कदाचित मिल गए, आकस्मिक मिल गए, और आकस्मिक मिल गए बिछुड़ गए। ऐसे ही संसार में कुटुंब में प्राणियों का ये आकस्मिक मिलन है, अकस्मात यूं ही हो गया बस। इसको सच्चा मान करके यहां बैठा रहना, ये तो सबसे बड़ी भारी अधर्म की बात होती है। इसलिए ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। और इस संसार में कैसे रहना चाहिए कि जैसे घर के अंदर सांप रहता है तब आदमी कैसे रहता है जी। और ये सांप है भाई, वो रात को सोता नहीं, जगता है, सावधान रहता है। ऐसे ही भाई हमारे शरीर के अंदर सांप बैठा है, सांप काल रूपी सांप, ऐसे मृत्यु से सावधान रहो। और मृत्यु आ जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसा व्यवहार, ऐसा समझ करके लोगों से व्यवहार करना चाहिए। का तैले का घृते ब्राह्मण, अरे तेल है, घी है, शहद है, तरह तरह की औषधियां हैं, ये मैं किसी प्रकार से नहीं बेचता हूं, शायद नहीं बेचता हूं, घी नहीं बेचता हूं, और औषधियां दवाइयां नहीं बेचता हूं। ऐसा करने से तकलीफ होती है, क्योंकि शायद इकट्ठा करने से तकलीफ होती है। और अब बताया, कई प्रकार की बातें बताई कि गाय लोग, गाय के बैल होते हैं बैल बना लेते हैं सांडों के, उनको बधिया करते हैं, बड़ा पाप लगता है, फिर उनके ऊपर भार ढोते हैं और फिर उससे धन कमाते हैं, ऐसा काम मेरे यहां नहीं होता है। इसलिए शुद्ध व्यापार, शुद्ध वृत्ति, शुद्ध भावना, इस कारण से मेरे यहां किसी प्रकार से कोई अधर्म की बात है ही नहीं, ये मैं तपस्वी है, तपस्वी जीवन से श्रेष्ठ मानता हूं। तब जाजली ने उनको नमस्कार किया कि हे तुलाधार, मेरा घमंड आज दूर हो गया। अनेक प्रकार से उनको समझाया और उनकी सब बातों को ध्यान से सुनकर के, और वो जाजली अपने आश्रम में जाकर विचार करने लगे कि अरे तपस्या से ज्यादा खतरनाक तो हमारा अहंकार है, हमारी ममता है, हमारी कामना है, हमारा लोभ है। तपस्या करके क्या हो जाएगा? तपस्या से यदि अहंकार बढ़ गया तो वो तपस्या हमारे क्या काम आएगी? सबको उन्होंने जो है दोषों का त्याग किया और वो आत्मा में स्थित हो गए। अब जो है परीक्षित, अब जो है युधिष्ठिर महाराज आगे पितामह भीष्म से दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न ये करते हैं कि महाराज, कभी कभी बड़े आदमी कोई आज्ञा दे देवे कि ऐसा काम करो, और उस आज्ञा में दोष दिखता हो तो क्या करना चाहिए महाराज? तब पितामह भीष्म इसका उत्तर आगे देते हैं। अभी प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले
की जय,
आनंद कंद भगवान अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की, भक्तवत्सल भगवान की जय।